ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஷணமாஷா தட்சிணாயணம் தத்த சாந்தம சம்யோகி ஜோதி பிராப்ப நிவர்த்ததே. இஸ்மே ஆயா ஹை நிவர்த்ததே. चांदमसम ज्योति प्राप्त निवर्तते, इसमें आने का वर्णन है, उसमें आने का वर्णन नहीं है. पहले वाले मंत्र में जो उत्तरायण से जाते हैं, अर्ची मार्ग से जाते हैं, तो वहां लौटते नहीं है, और जो ये धूम मार्ग से जाते हैं वो लौटते हैं. एक और इस प्रसंग में सुन लीजिए, जो महापुरुषों से मैंने सुना है. आप ये निश्चय कर लेंगे, यदि आपको सही नहीं बताया जाएगा कि बस जो दक्षिणायन में मरेगा वो स्वर्ग ही जाएगा, जो उत्तरायण में मरेगा वो ब्रह्मलोक जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है. चार प्रकार की गतियां हैं जीव की, चार प्रकार की. एक तो गति ये है कि वो यही जिसको बोध हो जाता है, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्नेन, जिसको ज्ञान हो जाता है अभिन्नेन, वो बस यही तस् प्राण नोत्क्रमन्ति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, वो यही विलीन हो जाता है. एक तो ये हो गया. दूसरा मार्ग ये है कि जायस्व मरियस्व, जायस्व मरियस्व, जो स्वर्ग के रास्ते से नहीं गुजरते हैं, जो ब्रह्मलोक माने सूर्य मार्ग से जो नहीं जाते हैं, जो चंद्र मार्ग से नहीं जाते हैं, या दक्षिणायन उत्तरायण से जो जिनका प्रस्थान नहीं होता है, उनकी गति यहां ही होती है. जायस्व मरियस्व, जायस्व मरियस्व, जन्मो मरो, जन्मो और मरो. शुकर कुकर आदि यूनि यहां प्राप्त होती रहती हैं. और जो वैदिक विधि से यज्ञादि कर्म करते हैं, और समुचित रूप से उसका उसके कर्म में यदि कोई वैगुण्य नहीं है, वैगुण्य से रहित यदि विधि पूर्वक कर्म संपन्न हुआ है, तो वो जाएगा धूम रातिस्थ, धूमो राति तथा कृष्ण षडमासा दक्षिणायनम. धूम का मतलब समझ लीजिए आप. जब व्यक्ति दक्षिणायन में शरीर का त्याग करेगा तो पहली सीढ़ी होगी, पहली सीढ़ी होती रात्रि, माने रात्रि का अभिमानी देवता. वो रात्रि का अभिमानी देवता कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को देगा, और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता फिर षडमास के अभिमानी देवता को देगा. षडमास का अभिमानी देवता चंद्रमा को दे देगा. चंद्रमा फिर चंद्रमा को ही स्वर्ग कुछ कहते हैं, और कुछ कहते हैं वो द्वार है, ऊपर चला जाता है स्वर्गलोक. इसी प्रकार से जो उत्तरायण में मरते हैं, जिनको सूर्य गति प्राप्त होती है, अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वो दिन के दिन का जो देवता है, दिन का जो देवता है वह शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को दे देगा, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उत्तरायण के अभिमानी देवता को दे देगा, और उत्तरायण का अभिमानी देवता सम्मसर को दे देगा, अर्थात सूर्य भगवान को दे देगा, वहां से वो ब्रह्मलोक जाएगा. पर आप देखिए कि बहुत पुण्य करने वाले लोग भी दक्षिणायन में मरते हैं, उत्तरायण में मरते हैं. जो ऐसे भी लोग हैं जो यज्ञादि करते हैं वो उत्तरायण में मरते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो तप करते हैं, जंगल में रहते हैं, वो दक्षिणायन में मरते हैं, तो क्या होगा? तब यहां ऐसा होता है कि जो चंद्र मार्ग से जाएगा वो उत्तरायण में यदि मरेगा, तो दिन का अभिमानी देवता रात्रि के अभिमानी देवता को दे देगा, अदला बदली हो जाएगा. ये न समझना कि उत्तरायण में मरने वाला ब्रह्मलोक ही जाता है और दक्षिणायन में मरने वाला चंद्रलोक ही जाता है, यहां ट्रांसफर भी हो जाता है. जिसको जो गति मिलनी है, यदि व्यतिक्रम हुआ कहीं मौत में, तो ट्रांसफर भी हो जाता है। ये चार गति हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये दो गतियां बताई हैं और ये उपनिषद में भी ये दो गति आप सुन ही रहे हो। पर ब्रह्मलोक के संबंध में जो ये बात आई है ना आने की बात, यत्रामृतः स पुरुषो हि अव्यात्मा, उस अव्यात्मा पुरुष को प्राप्त होते हैं, यहां ना आने की जो बात कही गई है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आब्रम्ह भुवनान लोक है। प्रमाण में है कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में वो लोग ब्रह्म लोक से भी जाकर के नीचे आते हैं। कौन है? बहुत कम ऐसे होता होगा, मैं तो ऐसा समझता हूं। पर जो जिज्ञासु नहीं है, यदि केवल वो स्वर्ग ब्रह्मलोक के भोग की इच्छा रखे हुए होंगे तो वो लोग आएंगे। इस प्रकार से ये दो गतियां बता करके अब देखो इन दोनों के वर्णन का जो तात्पर्य है, इन दोनों का जो वर्णन किया गया है वो किस प्रयोजन से किया गया है वो इस मंत्र में बता रहे हैं। आगे वाले मंत्र में परिच्छ लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तिकता कृतेना तद विज्ञानार्थम सगुरु में अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परिच्छ लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया, चार बातें इसमें कही है। एक बात तो कही है कि यहां परीक्षण करो, यदि आपको यही सुख की अनुभूति होती है, यदि आपको यही शांति प्राप्त हो गई है, यदि आप यही कृतार्थ हो गए हैं तो फिर उनके लिए तो बात ही नहीं। जिनको दुनिया जो जिनको बंधन ही मोक्ष लग रहा है, जिनको दुख ही स्वर्ग लग रहा है, जिनको नरक में ही स्वर्ग की प्रतीति हो रही है अपने स्वभाव से, संस्कार से, प्रकृति से, उसके लिए तो कोई बात नहीं है। पर जो थोड़ा सा जिनके जीवन में पुण्य है, पुण्य का संबल है, उनके जीवन में विचार है, उस विचार वान व्यक्ति के लिए ये बात कही जा रही है। एक छोटी सी घटना बताऊं। एक भिक्षुकी थी, भिक्षुकी भीख मांग रही थी। बड़ा सुंदर शरीर था और अवस्था भी अभी छोटी थी नारायण। एक महाराज धीराज, मैंने राजराज, राजराज का मतलब होता है राजाओं का भी राजा, प्रजा का राजा होता है वो राजा होता है, जो राजा का भी राजा होता है वो राजराज, उसे महाराज धीराज भी कहते हैं। वो महाराज धीराज अपने रत्नों से जटित हाथी में जो हो बैठने का होता है उसमें बैठे हुए थे। उसने देखा कि एक भिक्षा का पात लेकर के एक भिक्षुकी जगह जगह मांग रही, कहीं मिलता भी है, कहीं तिरस्कार भी होता, कहीं लोग विनोद भी करते हैं। राजा बड़े पास से गुजर रहे थे, देखा कि बड़ी सुंदरी है, अपने सेवकों को बुलाया, बुला करके कहा कि देखो इस भिक्षुकी के पास जाओ और यदि विवाह करना चाहे तो हम विवाह इसके साथ कर सकते हैं। सेवक गए और राजा के सौंदर्य को, राजा के आभूषणों को दिखाते हुए, सूर्य के समान प्रकाशमान हाथी में बैठा हुआ था, पुण्यात्मा तो थे ही, भिक्षुक को दिखा करके कहा देखो राजा साहेब हमारे हैं, वो राजा साहेब हाथी में बैठे हुए हैं, वो आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह कर लीजिए। उस भिक्षुकी ने कहा कि ठीक है, हम राजा के साथ विवाह कर लेंगे। हाथी को बैठा दिया गया, बिना बैठाए तो कोई चढ़ नहीं पाता उसमें, या हाथी ऐसे पैर भी कर देता, सीढ़ी बना देता अपने पैर की, रस्सा पकड़ करके भी उसके बाहों में बल होता है चढ़ जाता है। हाथी को बैठा दिया गया, एक हाथ से रस्सा पकड़ा, रस्सा होता है हाथी, और पकड़ करके एक हाथ में भिक्षा का पात्र था। सेवकों ने कहा, राजा ने कहा अरे ये भिक्षा के पात्र को फेंक दो, दोनों हाथ से पकड़ो रस्से को। रस्सा जो एक हाथ से पकड़ रखा था उसको भी छोड़ दिया, उसको संशय हो गया। राजा से पूछा क्यों भिक्षा का पात्र क्यों छोड़ दूं, बोले कि अब भिक्षा को मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि भिक्षा नहीं मांगने दोगे, ये तो राजा के अनुरूप नहीं, रानी के अनुरूप नहीं भिक्षा मांगना, अब रानी हो रही है ना, भिक्षा नहीं मांगने दोगे कि नहीं भिक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि जाओ हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। राजा के साथ विवाह नहीं करना है, क्यों नहीं करना है कि भिक्षा का जो राग है वो निवृत्त हो जाएगा। वो राग कहां जाएगा, राग कैसे छूटेगा? तो आपको इसी प्रकार से देखे, यहां श्रुति कहती है कि परिच्छ लोकान कर्मिष्टान, लोग को देखो ये हमारे रागवश ही दुनिया हमको अच्छी लगती है, इसलिए हमारे जीवन में निर्वेद निर्वेद और विचार ये दोनों उत्पन्न नहीं होते हैं। चार बातें इसमें कही गई हैं। एक तो कहा गया है कि पहले देख लो दुनिया को, उससे क्या होगा, वैराग हो जाएगा। एक बात तो ये हो ब्रह्मणो निर्वेद माया, और दूसरी बात यह है कि फिर विज्ञान के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगी, या यूं कहिए कि विवेक होगा, विवेक होगा तो वैराग होगा। साधन चतुष्टय है ना, आपने वेदांत के प्रज्ञा ग्रंथों को पढ़ा होगा, विवेक का अनुगामी है वैराग्य। तो परीक्ष लोकान, लोक की परीक्षा करोगे तो विवेक होगा, विवेक होगा, अमृत और विष का ख्याल होगा, अमृत और विष की जानकारी होगी, विष को छोड़ने के लिए अमृत को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, विष से वैराग होगा, अमृत की प्राप्ति करने की इच्छा होगी। पहला है विवेक, दूसरा होगा विवेक का अनुगामी, विवेक का अनुज वैराग्य होगा। और वैराग्य के बाद है, इसमें बोलते हैं कि तद विज्ञानार्थम सगुरमेव अभिगच्छेत, इसमें समदम समदम से युक्त होकर के वही व्यक्ति गुरु के पास जा सकता है जिसके जीवन में अकड़ और अभिमान न होए, वही कहीं किसी के पास अपनी अनभिज्ञता प्रकट करके कुछ लेने की इच्छा करेगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, और वो एक ऐसा हो तुम्हें क्या चाहिए हमारे जीवन में, तो मुमुक्षा है तो ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ, यदि राग हो तो किसी सेठ के पास जाओ, यदि मुमुक्षा हो तो। तो चार चीजें इसमें आपसे कहा कि चार चीजें बताई गई है। तो पहली बात तो ये है, मेन बात तो ये है कि पहले देख लें कि ये दुनिया किसी को दुख नहीं देती है, सुख नहीं देती है, नारायण सुख नहीं देती है। आपको एक दिन और बताया था कि भगवान भी परेशान हो जाते हैं तब उस तब प्रलय इसका करते हैं, आप भी दिन भर थके होते हैं, काम से टूट जाते हैं, काम से अशांत हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, तो आप भी ही इसको छोड़ करके सुषुप्ति में जाने की इच्छा करते हो। तो जो भी आपके और हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त होगा वह सब क्षणिक होगा, हमारी उसमें मोहर लगी होगी, जो चाहते हो वो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो पुरुषार्थ से संपन्न होगा प्राप्त होगा वह सब क्षणिक होगा, नश्वर होगा। ये बिल्डिंग की भी एक अवधि बताते हैं इंजीनियर, पुलों की भी एक अवधि बता देते हैं सेतु जो बनाते हैं, गाड़ी की भी एक निश्चित गति का निर्णय कर देते हैं कि इतने दिन तक ये चलेगी। तो जो व्यक्ति के कर्म से बनेगा वह नश्वर होगा, यदि स्वर्ग का प्रलोभन हो तो इसको भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो भी नश्वर ही होगा, यही परीक्षा है। इतने प्रयत्न से जितने हमने प्रयत्न किए हैं, एक जन्म नहीं किए हैं, अनंत जन्म किए हैं, सुबह से शाम तक भटकते रहते हैं, जीवन से मृत्यु पर्यंत हम इधर उधर घूमते रहते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, सुख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं अपने लक्ष्य की या उद्देश्य की प्राप्ति में। तो कर्म का कर्म से प्राप्त होने वाली पांच प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक तो होती है उत्पाद्य, भगवान शंकराचार्य इसमें संक्षिप्त में लिखा है, वो इसलिए आपको बता रहा हूं। एक तो होता है उत्पाद्य, उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। जो उत्पन्न करके प्राप्त की जाएगी वो मोक्ष नहीं होगी, वो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति को उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि प्राप्य, जो हमारे पास नहीं है उसको हम उत्पन्न करके प्राप्त करेंगे तो वो हो गई उत्पाद्य, वो मुक्ति नहीं होगी। जो हमारे पास नहीं है, हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो प्राप्त कर लेंगे, कुम्हार से जैसे घड़ा प्राप्त करते हैं, वो भी मुक्ति नहीं होगी। किसी से प्राप्त होगी जो वस्तु, वो भी मोक्ष नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से उसमें विकार हो गए, घड़े में नमक लग गया हो, टूट रहा हो, तो उसका संस्कार कर देते हैं, तो विकार भी मोक्ष नहीं है, संस्कार भी मुक्ति नहीं है, और विनाश भी मुक्ति नहीं है। अंततो गत्वा समस्त संसार की वस्तु विनाश के मुंह में पड़ी हुई। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद परिहारे अर्थे न तुम सोच तुम अर्हसि। जात की मृत्यु होती है, मृत्यु का जन्म होता है, इसलिए यह अपरिहार है। तो जो अपरिहार है, अपरिहार क्या है कि मौत अपरिहार है, मौत का कोई परिहार नहीं है। चाहे शरीर हो, चाहे इससे भिन्न संसार हो, सबकी मौत होती है, और मौत किसी को पसंद नहीं है। मौत है किसी को अभीष्ट नहीं है। तो हमारी मौत न होवे इसके लिए हमें पहले परीक्षण करना चाहिए। अपने पहले जो पूर्व पीढ़ी थी, वो कहीं कभी बच्चे रहे होंगे, उनके पिता ने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा पढ़ा हो जाए, पढ़ा हो गया, पढ़ा भी हो गया, अब सर्विस मिल जाए तो सर्विस भी मिल गई, फिर बोले विवाह हो जाए, फिर विवाह भी हो गया, फिर बोले बहुत दिन हो गए बच्चा नहीं हुए कोई, फिर बच्चा भी हो गया जी। अब वो बूढ़ा तो चिंता करते करते पोता की मर गया, और फिर जो बाप हुआ वो बच्चे होने पर वो भी यही सोचता है कि ये पढ़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, विवाह हो जाए, कहीं लग जाए। बस यही गोरख धंधा दुनिया का चल रहा है। उन्होंने क्या प्राप्त किया है ये आपको और हमको विचार करने के लिए श्रुति कह रही है। क्योंकि बिना विचार के मुक्ति का तो कोई स्थान ही नहीं है। बिना विचार के संसार के रोग की निवृत्ति का कोई औषधि ही नहीं है। जहां जो औषधि और प्रत्न काम नहीं करती है, ना औषधि काम नहीं करती है, विचार काम करता है। विचार जो कुछ भी नहीं दिखता है वो भी विचार से दिखता है। श्रुतियों में आता है कि चार प्रकार की ज्योतियां होती हैं, और चार प्रकार की ज्योतियों से काम होता है। एक ज्योति सूर्य की होती है, सूर्य न हो तो चंद्रमा की ज्योति, आजकल तो व्यक्ति विद्युत भी प्रकट कर लिया है, तीसरी ज्योति ये भी है। क्योंकि ज्योतियों के बिना तो कोई काम होता नहीं, सूर्य भी न हो, चंद्रमा भी न हो, बल्ब भी न हो, तो क्या करोगे अंधेरे में। तो ये एक तो सूर्य ज्योति से काम करता है, सूर्य नहीं होता है तो चंद्रमा की ज्योति से काम करता है, चंद्रमा भी न हो, सूर्य भी न हो तो बल्ब की ज्योति से काम करता है, अग्नि को जला करके काम करता है, यदि ये भी न हो तो विचार की ज्योति है, आत्मज्योति जिसे कहते हैं। तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि विचार है हमारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला की निवृत्ति का यदि कोई हेतु है तो वह विचार है। ऐसी कोई आज तक डॉक्टर ने, दवा या वैज्ञानिकों ने नहीं बताया है जो जन्म मृत्यु की परंपरा का उच्छेद करने वाली कोई औषधि बनाया हो। वो है सिर्फ शास्त्र का विचार। तो ये देखिए समनश्वर प्राप्त होता है तो निर्वेद मायात, इससे निर्वेद की प्राप्ति हो जाएगी। और नास्ति अकृतः कृतेना, कृतेना अकृतः नास्ति, मने ये बोलते हैं कि जो अकृत है, जो किया नहीं गया है, क्या चीज नहीं की गई है, आपका आत्मा, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को चित कहते हैं, उसी को सद कहते हैं। देव नश्वर वस्तुओं से व्यक्ति का कितना मोह है, जो सद रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, उसे प्राप्त करने के लिए जो जिसका कभी विनाश ही नहीं होता है, जिसमें कभी दुख का लेश नहीं होता है, जहां कहीं मौत की गंध ही नहीं होती है, जहां कहीं दुख का लेश भी नहीं होता है, क्लेश का लेश नहीं होता है, उस वस्तु को प्राप्त करने का व्यक्ति की जिंदगी में विचार ही नहीं उत्पन्न होता है। ये करेंगे वो करेंगे, ये प्राप्त करेंगे तब सुखी हो जाएंगे, वह प्राप्त करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। बोले बाबा फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये गोरख धंधा क्यों जारी है? तो ये हमारे जीवन में राग है, हमारे जीवन में द्वेष है, निर्भेद नहीं है, राग है। राग रोग है किसका? ये जन्म का जो दुख है, मरण का जो दुख है, जरा का जो दुख है, रोग का जो दुख है, इन सब दुखों का रोग क्या है? राग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब कोई पहले मरता था तो मातम पड़ोस में छा जाता था, जो लोग जाते थे वो भी कहते थे नश्वर है। बस एक ही वृत्ति होती थी, नश्वर है। देखो कितना सफल व्यक्ति था, मर गया, सब छोड़ करके ही तो गया। कितना परिवार था, कितने पैसे थे, कितनी प्रतिष्ठा समाज में थी, क्या पद था, और यूं ही छोड़ करके चला गया, हमको भी जाना होगा, तो व्यक्ति कांप जाता था, उसके जीवन में वैराग उत्पन्न होता था। और आज तो स्वर्ग आश्रम बने हुए हैं, वहां चाय भी बनती है, आपको नहीं मालूम होगा, पेपर भी पड़े हुए हैं, वो जल रही है, चिता व्यक्ति जल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देखने का। अब भगवान ने तो झूठी बात कह दी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे क्या होगा बाबा? बोले वैराग होगा। यहां वैराग की तो निशानी ही नहीं मालूम पड़ती है, जन्म देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अरे नारायण, हम इसके आदि हो गए जी, आदि हो गए, रोज रोज मरेगा, किसके किसके लिए रोएंगे हम? जब दयनीय दशा जीने की आदत व्यक्ति को बन जाती है, आदत बन जाती है, तो उसका छूटना बड़ा कठिन होता है, अपने से तो नहीं छूट सकता है। हाँ, वो चाहे ना ऊपर वाला तो मदद कर सकता है। इसलिए तो ये कर्म का पहले प्रतिपादन किया गया है कि कर्म करेंगे यदि आप, और वो भी निष्काम भाव से करेंगे, सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो क्या करेंगे? ईश्वर क्या कर देगा? अरे भाई, हमारे को दर्शन देने आएंगे ईश्वर, तो हम अपनी आंख से ही तो देखेंगे, यदि हमारी आंख ठीक न होगी, अकल ठीक न होगी, तो उसे ठीक कर देंगे। देखना तो हम ही को पड़ेगा जी। जैसे डॉक्टर के यहां आप जाओ कि डॉक्टर साहब हमको दिखता नहीं है, तो बोले कि तो हम आपकी आंख ठीक कर देंगे। आप कहो कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी आंख ठीक मत करो, ये क्यों तुम्हें दिखता नहीं कि हम तुम्हारी आंख से देखें? तो ऐसा हो जाएगा? तुम्हारी बुद्धि से हम विचार कर ले, हमारी बुद्धि भी ठीक न करो, हमारी आंख भी ठीक न करो, डॉक्टर कहेगा, हाथ जोड़ेगा कि आप जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। अरे डॉक्टर तो आपकी आंख ही ठीक करेगा, उसका जो जाला है निकाल देगा, उसमें दवा डाल देगा, चश्मा लगा देगा, आपके अपनी आंख से ही तो कोई चीज देखी जा सकती है, डॉक्टर की आंख से कैसे आप किसी को देख सकते हैं? डॉक्टर तो अपनी आंख से देखेगा। तो इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर आपकी आंख को ठीक करके दुनिया दिखा देते हैं, इसी प्रकार से यदि निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो परमात्मा भी नारायण हमारे जीवन में जो राग द्वेष ये है, जाले मुतिया बिंदु को हटा देंगे, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति माशिता महात्मा बना देंगे भगवान न माम दुष्कृत नु मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया पति ज्ञानम आश्रम भाव माशिता। और फिर कहते हैं जो सुकृति होते हैं ना वो मेरा भजन करते हैं। तो जब सुकृति भजन भगवान का करेंगे तो भगवान उनकी मदद करेंगे। तो दूसरे नंबर में निर्वेद है निर्वेद। एक छोटी सी घटना सुनाकर वाणी को विराम देता हूं, एक मिनट है। आपने पिंगला का नाम सुना होगा। पिंगला तो आप उसकी हालत भी पंडितों से सुना होगा, वो बेचारी अब बाहर आवे और अंदर जावे, जब बाहर कोई आशा की किरण निकले तो अंदर जली जावे, और जब लेट जावे तो नींद ना आवे, फिर सोचे कि क्या पता है थोड़ी देर और बैठूं क्या पता है, ना तो सो पाई ना तो वहां कोई अभीष्ट की वस्तु की प्राप्त हुई, बड़ी दुखी हुई। दुविधा की स्थिति बड़ी भयावह होती है जी। उसको वैराग हो गया, उसने गीत गाया और कहा कि वाह भगवान लगता है मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, क्या प्रसन्नता, आपको क्या पुरस्कार दे दिया, आपको क्या गिफ्ट मिल गया परमात्मा की ओर से जो प्रसन्न कह रही हो। तो बोलती है न्यूनम में भगवान प्रीतः विष्णु केनापि कर्मणा निर्वेदो यम दुराशाया इनमें जातो सुखावहा। निर्वेदो यम दुराशाया, दुराशा को निवृत्त करने वाला ये निर्वेद मेरे को प्राप्त हुआ है, ये मेरे जरूर कोई पूर्व कर्म पुण्य होंगे जिससे भगवान प्रसन्न हो गए हैं और निर्वेद की प्राप्ति हो गई। अगला प्रसंग आपकी सेवा में कल संग हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।